जितने सखा थे और बछड़े बंगे एक वंश चराते रहे। उस समय में जितने बड़े बड़े वृद्ध गोप थे ये गोवर्धन पर चढ़े हुए गौओं को चरा रहे थे और कृष्ण बलदेव अपने सखाओं के साथ में छठी करा के निकट कहीं घन में बछड़ों को चरा रहे हैं। छोटे छोटे जितने गोप थे वहां पर गोवर्धन के ऊपर में चढ़ करके गौओं को चराते, उनके साथ साथ में कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी बच्चे पैदा हुए। गयों ने यहीं से दूर से देखा। बलदेव जी ने पहले शिंगा बजाया और बंसी फली, गायों ने पूछ घोड़ा काट और वहीं से कूदती हुई कृष्ण की तरफ लाखों लाखों गाय जिनके बच्चे एक वर्ष के हो गए थे, डेढ़ वर्ष के हो गए उनके तरफ ले तो। गोपों ने लक्ष्मियों से उनको रोका, तुम मान नहीं गए, गोपियां गाली नहीं मान गए, लाठी से पीटा घेरा किंतु वो कुत्ती हुई गढ़ा नहीं देखा कांटे नहीं देखे, बस एकदम पूछ लुका करके बच्चों को बुकाते नीचे निकालने से ये बच्चे बड़े बदमाश आज चलेंगे था एक एक थप्पड़ सब बच्चों को दे। ये सिंगा क्यों बजाया, बेनू क्यों बजाया, ये गाय सब फड़क करके अपने बच्चों की तरफ में घूमे, अपने जो एक वर्ष के बच्चे हैं उनके तरफ में। जब नहीं हुआ तो बिगड़ते हुए किसी का वो जूता रह गया, कहीं लठिया गिर पड़ी, बड़े हाँपते हाँपते किसी प्रकार से आए, सोचाया जरूर मारेंगे उन्हें। जब वहां आए तो देखा क्या, जो एक वर्ष के बच्चे थे उनके पास में पहुंच करके गाय माने उनको ऐसे चाटने लगी जो अपने पेट के अंदर में ले ली, स्नेह से आंसू छाने लग गए। जब गोप वहां आए और इस दृश्य को कृष्ण को भोली भाली रूप में देखा, तो देव जी को देखा, सुबह श्रीराम और मंगल और जो लमंग इत्यादि को देखा, अपने बच्चों को देखा, उनके भी न जाने कहां जाने क्रोध कहां चला गया, स्नेह से उनके आंसू छाने लगे और बच्चों को गोदी में ये क्या बात क्यों ऐसा हुआ, अपने नए बच्चों को छोड़कर के गाय और पुराने बच्चों को स्नेह कर रही है, ये क्रोध में भरे हुए वाले आए और अपने बच्चों को देख करके रोने लग गए और स्नेह से अपने अंक में कर लिया, ये क्यों ऐसा हुआ। मैंने देखा कि सारी को ये तो कुछ विचित्र मामला लगता है, ये तो किसी भूख की तो माया तो हो नहीं सकती। अच्छा फिर और देखा जो ये ब्रह्मा जी की तो माया हो नहीं सकती, ये और भी ब्रज में देखते हैं कि माँ अपनी जो है वो नए बच्चों को प्यार न कर करके कृष्ण को ही अधिक प्यार करती, पहले कृष्ण को और अपने बच्चों को बराबर ही प्यार करती थी और अब क्या देख रहे हैं, पहले करती थी अपने बच्चे को कृष्ण को अधिक प्यार करती थी और इस समय देखेंगे जितने अपने बच्चे हैं बच्चों पर अधिक स्नेह हो गया कृष्ण के बराबर, और पहले कृष्ण पर अधिक था अपने बच्चों पर कम था, आया समझ में, पहले कृष्ण को देख रही है कृष्ण पर अधिक स्नेह था उनका, गायों का अधिक था, और देखा गायों का अपने बच्चों के प्रति जितना प्यार और गोपियों को देखा अपने बच्चों के प्रति जितना प्यार, ये क्यों ध्यान लगाया तो ब्रह्माटी माया नहीं, ये तो जोग माया भी नहीं, ये क्या है, ये तो कृष्ण की अपनी इच्छा से स्वरूप शक्ति जो जोग माया की है, दूसरी माया महामाया नहीं। अरे ये देखो तो ये देखिए लठिया हैं कमलिया हैं जितने बच्चे हैं जितने बछड़े बने हैं और ये तो सब कृष्ण है, देखो तो हंसने लगे मुस्कुरा करके सामने कृष्ण थे, अरे भैया यशोदा भैया के पेड़ से तो दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरा, आप ब्रज के गांव घरों घरों में मक्खन और दूध गरम गरम खाना खाना पिया उसे भी पेट नहीं भरा, आज गायों जो लाखों गाय हैं उनके बच्चे बन करके तू दूध पी रहा है, और लाखों कृष्ण बन करके बच्चे बन करके और इन कोटि कोटि माताओं का दूध पी रहा तो भी पेट नहीं भर रहा, ये तो तुम्हारे ही के होगा। क्यों ऐसा किया? कृष्ण ने मुस्कुरा दिया, सब एक बस प्रकृति को भी मालूम नहीं हुआ तो और किसको मालूम होगा, ये गोवर्धन जी की परिणी में ये घटना हुई। मानसी गंगा का प्रकट उन्होंने बतलाया था, दान घाटी यही पर है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने दान घाटी का वर्णन किया। दान क्या मांगा जाए, मक्खन और मिश्री दो, प्रेम का दान मांगा, कौन सा प्रेम, मधुर प्रेम का दान वो से मांगा, जाओ और कहीं जगह नहीं वो दान। वो बर्तन की घाटी में वो हम लोग देखते हैं ना बरसाना, उससे भी लाख गुना श्रेष्ठ ये स्थान है। और काशी में दानी बर्तन कुंड है, गोपियों ने उसको, गोपियों से कृष्ण ने जोर करके दिया, और गोपियों ने क्या किया, कृष्ण से जोर करके दूचे मार करके उनसे पिता रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़े सरस रूप में इस सबका वर्णन किया, सरस रूप कितने वर्णन। यही पर गौरी कुंड है, कृष्ण को पद्मा और सत्या के द्वारा कृष्ण को जबर किसी प्रकार से बाला करके वहां पर ले गई, तो सत्या और पद्मा गौर कुंड में चंद्रावली से मिलने के लिए। इधर इन लोगों ने देखा जिससे ये बीच से हरण कर लिया, इसलिए लंका विशाखा ने परामर्श करके कोई ऐसा किया, विशाखा को भेज दिया, विशाखा जी वहां पर चली गई। चंद्रावली जी यहाँ पर कैसे आ गई, इसलिए जो एक कोई असुर अरिष्टासुर जैसा आकर के और गायों को सबको मार रहा है और उनको खा रहा है, यदि एक मिनट की देरी हुई तो ये सब गायें तमाम हो जाएंगी और ब्रजवासियों को भी और सब गोपियों को भी सबको ये मार डालेगा। ये कहकर के आपकी इच्छा हो तो आइए, नहीं तो नहीं पड़ेगा। शंकरसन जी का बताया ना वहां पर, शंकरसन को किस लिए, दो कारणों से, संपत्ति उनका मनी लेकर के वहां पर गया, और एक बच्चों ने बतलाया कल जब पानी भरने लगा ना जहां उठाया कृष्ण ने पर्वत को, तो वहां बहुत बड़ा भारी गड्ढा था, उसके अंदर में सभी चले गए, तो जब पानी एक फुट दो फुट तीन फुट चार फुट पांच फुट जब बढ़ने लग गया क्रमशः, जैसे अभी मथुरा में हुआ था, पांच फुट बढ़ते बढ़ते छह फुट सात फुट नीचे का तल्ला भी डूब गया, वैसे ही जब पानी बढ़ने लगा तो बलदेव प्रभु जी शेषनाग के रूप में चारों तरफ से स्टन करके और प्राचीर जैसा, और एक बूंद पानी नहीं आया, तो जहां पर उनका मुखार बिंद था, मुखार था वहीं पर संकर्षण। इस तरह से ये सब लीलाएं, मानसिक यहीं पर मानसिक गंगा हम लोग कर गए, वहीं पर पारंग था, वहीं पर गोपियों को कृष्ण मल्लाह बन करके बड़े कौतुक से पार करते थे। उसका श्रीरूप गोस्वामी ने बतलाया, मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती था, जटाई को गंगा मनु राज राधा आरोह चमकते ही कोई भक्त नगर ऊपर कृष्ण ही राधा हम गौरव को बोलता गोवर्धन। और एक जटाई को कृष्ण विश्वनाथ पुत्र दानंद ही तुम कलम जीते ने सुते इस्तिहार जसमान तथाशी वर्तनोले, कहीं हमारी इच्छा को पूर्ण करे, तुझे तुम्हारी इच्छा क्या है, तो वो साधक कहता कि हमारी इच्छा भी अभी आप तो अभी तक नहीं समझ सके, अरे प्रार्थना में हमारी जो है उसी को पूर्ण कर दीजिए क्या। इस प्रिहा में जत्रैव कृष्णो विश्वभान पुत्र दानं गृहीतुं कलहं वितेने, वो उसमें हम भी एक हो जाए, ऐसा कुछ जो हम भी उस दल में सम्मिलित होकर के राधा जी के पक्ष से होकर के कृष्ण से प्रेम का कलह करें, ऐसी आप आशीर्वाद करें। उद्धव जी यहीं पर आठ में से वहीं पर श्याम कुटी है जहाँ उद्धव कुंड है, उसी के पीछे में कुसुम सरोवर है। उद्धव जी ने जो वर मांगा था कृष्ण से, आशा महो चरण रेणु शाम और बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम बाद जो खास तीन लता हुए थे वो कहाँ हुए? जहाँ पर कुसुम सरोवर में कृष्ण से और गोपियों से कुसुम के लिए प्रेम कलह होता था। कृष्ण ने पूछा, तुम कौन है पुष्पों की चोरी कर रही हो? मैंने कहा, तुम नहीं जानते जो मैं कौन हूँ? आप कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण हूँ, नंदनंदन हूँ। हमने सुना है कि एक नंदनंदन था, बचपन में एक स्त्री को मार डाला दूध पीने के बहाने, और एक वो था जो बचपन में घर घर में चोरी करता था और गोपियां उनका कान मलती थी। एक कृष्ण को हमने सुना है जो अब उसकी मैया ने उसे चोरी करने के लत में बिगड़ जाता है, इसलिए उसको बांध करके रख दिया और कहती थी जब फिर चोरी करे ना लड़किया दिखा दी। और एक था जबकि थोड़ा सा पौगंड अमोर में आया, किशोरी गोपियों का वस्त्र हट करके ऊपर में चला, ऐसा अपर्ण धारे हमने सुना है। और हमने सुना जितनी गोपियां हैं उनको अपनी पत्नी बतलाता है और कोई भी गोपियां अपनी उनका पति नहीं बतला, तो इसमें से आप कौन से पर्व धार्मिक हैं ये बतलाइए। तो ये सब प्रेम कहा हुआ? गोवर्धन हुआ, कुसुम सरोवर, ये सब लीलाओं का बहुत ही सुंदर से राधा जी पुष्प चयन कर रही है, कृष्ण जी आए पेड़ के ऊपर में एक डाली पर बैठ गए जैसे कि और लोग ना देख सके। इतने में राजा जी आ करके उसको चयन करने लगे, ऊपर ही डाल को नीचे नवा करके जिस डाल पर कृष्ण बैठे हैं उसको नवा दिया था, उसको हाथ से पकड़ करके और दूसरे से। इतने में कृष्ण ने किया एक बार एक डाल से ऊपर डाल में पकड़ करके चले, इतने में वो डाल बहुत ऊंची हो गई और नीचे से ऊपर, अब तो ये चिल्लाने लगे रक्षा करो रक्षा करो। फिर कृष्ण उधर से ऊपर से उतर करके और उनको उठा रहा है। इस तरह से कुसुम सरोवर परमात्मा लीला जिसका तो बार बार बतलाते हैं। अनुपम वेदी रत्न सिंहासन और भी कृष्ण थक जाते हैं गोचार करने के लिए, सुंदर राज सिंहासन दे देते हैं जिसमें कस्तूरी मृग का और अंत घी लगाया हुआ है और पहाड़ों से इनका ये कुछ रोहिता भी इनका रंग होगा और कस्तूरी का रंग उसमें निकलेगा। इस तरह से यहाँ के बांसों में ऐसे छेद हो जाते हैं जो हवा आती है तो लोग मृगा समझते हैं क्या, अरे ये बंसी बज रही है, इधर देखती है कृष्ण को खोलती है देखती है। रसनिधि नम जूनो साक्षिणी दान के लिए कृष्ण रसनिधि है, रसनिधि कब है? जब गोपियां और कृष्ण के साथ में गोपियां और श्रीमती राधिका जिनके साथ तब रसनिधि, रसनिधि माने रस के समुद्र है। और नहीं यदि ये नहीं है तो साधारण रूप में प्रेम के भंडार है, ये बात ठीक है, और यदि ये भी नहीं परिकर नहीं है तो वो निर्विशेष निराकार निर्विशेष निरंजनीय। इसलिए रसनिधि नम जूनो साक्षिणी दान के लिए जो दान के जो साक्षी है ये कृष्ण, ऐसी कोटि कोटि लीलाओं के साक्षी हैं हे गिरिराज गोवर्धन, जिन लीलाओं के आप साक्षी हैं उन लीलाओं में प्रवेश कराइए वो हमारे हृदय में। आज गोवर्धन जिसे एक प्रार्थना करके यही पर आज वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत कुछ है किंतु इतना करके अभी हम लोग को परिक्रमा चल
কৃষ্ণ যাওয়ার সময় উদ্ধবকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, উদ্ধব তুমি আমার যাওয়ার পরে এই পৃথিবীতে সনাতন ধর্ম সেই জন্য উদ্ধব কৃষ্ণের আদেশ প্রথমে বদ্রিকা সমজা তারপরে বজ্রনাভ যখন এই সুরসেন দেশের রাজা হলেন এবং সমস্ত ব্রজভূমিকে প্রকাশ করবেন, তিনি তো কোনো কিছুই জানেন না কোথায় কোন স্থান কিভাবে আছে, তাহার কোনো কিছু গোচর ছিল। তাই তিনি মাতা উত্তরা শান্ডিল্য ঋষি এবং এই ধ্রুবকে বজ্রনাভকে আর উদ্ধবকে
প্রথমবার তিনি কৃষ্ণ এখানে তার মাতা পিতা এবং তার প্রেয়সীগণকে সান্ত্বনা দিলেন। আর দ্বিতীয়বার যখন কৃষ্ণ লীলা সংগোপন করলেন সেই সময় তাকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তুমি ঋতুর সঙ্গে দেখা করবে এবং তাকে বলে দিবে যে মৈত্রী ঋষির কাছে তিনি যাবেন এবং ওখানে বদ্রীনারায়ণেতে থাকবেন আর তুমি ওখানে যাবে। কোথাও কৃষ্ণ বিরহেতে অত্যন্ত ক্ষেতান্বিত হয়েছে, তিনি শেষের দিকে এইখানে ব্রজেতে আসেন। এক স্বরূপেতে তিনি বদ্রীনারায়ণে থাকেন, বিদুরকে তিনি সম্বাদ দিলেন এবং তাকে বলেন যে মৈত্রেয়ীর কাছে যাও, আর এক স্বরূপেতে ওই নারদ ওখানে আছেন, উদ্ধব ওখানে আছেন, বদ্রীনারায়ণ নর এবং নারায়ণ আছেন ওইখানে, আর এক স্বরূপেতে ব্রজেতে এইখানে আসেন। অনুগ্রহ যদি হয় তাহলে আবার কোন কোন জন্মেতে আমি তাদের চরণ গুলি দর্শন করবার এবং শিরেতে স্পর্শ করবার আমি সৌভাগ্য লাভ করব। তিনি এইখানে একটা শ্যাম কি আছে লীলা বিনোদ ইত্যাদি করেন, প্রেম কলহ করেন, এইসব গুলি সময় সময় আমি বলি। এইখানে উদ্ভব ঘাস বলেন শ্রীন আর তিন হয়ে শান্তিতে ওইখানে শ্যাম রঙেতে তিনি রঙেছেন। এইখানে যখন বজ্রনাভ আসেন তখন বজ্রনাভকে পরিচিত মহারাজ মথুরা রাজা করেন এবং তাহার প্রেরণা হল যে কৃষ্ণের যতগুলি লীলাস্থলী সব প্রায় লুপ্ত এগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন। সেই জন্য তিনি পরিচিত মহারাজ কাছে নিবেদন করেন বজ্রনাভ। তখন বজ্রনাথ দিল্লি থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সবগুলি পাঠিয়ে দিলেন মথুরাকে বাসিয়ে দিলেন, তারপরে শান্ডিল্য ঋষিকে নিলেন, তারপরে আরো যে প্রাচীন প্রাচীন সব ঋষি মহাত্মারা ছিলেন যারা কৃষ্ণের লীলাস্থলী জানত, তার দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গাতে কোথাও মন্দির কোথাও পাঠ কোথাও কোথাও সরোবর কোথাও কুন্দ কোথাও কুচু এই কৃষ্ণ লীলার স্মৃতি তিনি চারুদিকে তিনি করতেন। তারপরে এই স্থানেতে তারা আসেন, এসে শান্ডিল্য ঋষি তাকে বলে যে এই স্থানেতে তোমরা কীর্তন করো, উদ্ধব এইখানে আছে। তিনি বললেন উদ্ধব নত্র কোথাও যায় না, এক অংশেতে আছে বদ্রীনারায়ণীতে আর কোটি কোটি অংশের সে পরিপূর্ণ রূপে অংশেতে এইখানে ব্রজেতে এই কুসুম সরোবরেতে আর এই শ্যাম কুটিতে রাধা কুণ্ডের পদ দেশে, রাধা কুণ্ড মানে নেই রাধা কুণ্ডেতে না রাধা কুণ্ডের পদ দেশেতে যে তাহার কোনদিন কৃপা হয় এই জন্য ওর পদ দেশ হচ্ছে এইখানে, এইখানে এইখানে কীর্তন হতে লাগে। ওই কীর্তনেতে অর্জুন প্রভৃতি পার্শ্ব কৃষ্ণ এখানে এসে দেখলেন যে সেই এখানে যে ওই সব দ্বারকার যে মহিষীগণ তারাও বজ্রনাভের সঙ্গে সম্বন্ধী, যত মা পিতামহী সব লোকে ডেকে নিয়েছে। ইতিমধ্যে অর্জুন মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগলেন, ইন্দ্র এসে গেলেন, বৃহস্পতি এসে গেলেন, উদ্ধবের গুরুকে উনিও এসে গেলেন। ইতিমধ্যে দেখেন কি ওখানে থেকে প্রকট হয়ে গেলেন, তুমুল ভাবে কীর্তন হতে লাগলো। भक्ति कीर्तन गोविंद नामो
धर माधव की,
गोविंद नामो
धर माधव की।
हरे
मुकुंद
गोविंद
हरे
नंद
किशोर
कृष्ण
हाशी
प्रसीद
हाथ
ऐसे ऐसे सब कीर्तन में ऐसे प्रमत्त हो गए। देखा थोड़ी देर में ही उद्धव जी एकदम प्रकट होकर के नृत्य कर लिए। ऐसे आप भाविष्ट में आ गए, एक भाविष्ट हो गए। देखें जैसे उलखने थे श्री कृष्ण एवं राधिका जीवल मुखाने प्रकट। इति मध्य ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता आदि जो चंद्रावली पद्मा रूप मंजरी जो को ब्रज गोपीगण देखने आर मंडला कार्यती चारु दिगे सखा रा सब बुली और लठिया नहीं है आर कृष्ण सब सब लोग एकदम प्रमत्त है गलो राधा कृष्ण ने कीर्तने थे। कुछ खंड पड़े थे প্রথমে নন্দগামে যান উদ্ধব ক্যারি গোপী গণে সান্তনা দেবার জন্য যান। নন্দ বাবাকে সান্তনা দিতে পারেন না, যশোদামাকে সান্তনা দিতে পারেন না, তার গোপীগণ থেকে কিছু মহারাজ বললেন না তাদের বিরহ আরো বেড়ে গেল। বিশেষ করে তাহাদের জীবকোষ ধ্বংস হয়ে গেল। জীবকোষ ধ্বংস হয়ে মানে কি? জীবিত থাকার আসবার কি ছিল? কালকে ফিরে আসবে, কৃষ্ণ কাল লৌট আয়েঙ্গে। কিন্তু বরসো নেই লোক, কাল গেয়া পরসো গেয়া বরসো গেয়া কৃষ্ণ একদম আতুর হো গে সব ব্রজবাসী। উদ্ধব জিতনা জিতনা উপদেশ দেনে লগে কৃষ্ণকে ঠিক যো কহা হ্যায় ওই বোলনে লগে। কিন্তু উসকা অর্থ খুদেই নেই সমঝ রহে, ও আপনে ভাব সে অর্থ লগায়া। আর কৃষ্ণ নে যো উপদেশ দিয়া থা ও আপনে উদ্দেশ্য সে দিয়া থা। আর গোপীয় নে সমঝা কুছ অর গোপীয় মে লাখো গোপী স্বপক্ষ বিপক্ষ তটস্থ সূর্য আপনে আপনে ভাবন সে কৃষ্ণ কে সন্দেশ কো শুনা এক প্রকার সে সব লোক নিজে সুন্দর। এই সবগুলি স্থান হচ্ছে উদ্ধব যত সন্দেশ দেবার চেষ্টা করেন গোপী রাত্রি প্রক্রিয়া আর আকাঙ্ক্ষা মিলনের আর বাড়তে যান। এখানে আবার উদ্ধব ওইখান থেকে কত মাস তিন মাস না আমি যেখানে যাই সেখানে কৃষ্ণের স্মৃতি জড়িয়ে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারি। তুমি বলছো ধৈর্য, গোপী বনে তো ধৈর্যের কথাই বাকি। এই স্থানে ওই উদ্ধব তাদের মহিমা দর্শন করলেন আর উপলব্ধি করলেন গোপীগণের প্রেমের মহিমা কি রকম। হিমালয় মো কত উঁচু 27,000 কত আজ 30,000 একটি লোক এইরকম হতে দেখছে, দেখতে দেখতে তার মাথা এরকম। উদ্ধব একেবারে মূলেতে আছেন, হিমালয়ের তলাতে মনে করে এই যে মনে হচ্ছে সে এইগুলিকে ছেড়ে দিয়ে আমি বৃন্দাবনে তো গোপীগণের চরণ করি আমি সব এইরকম ভাবে শুনি। এই জন্য বললেন এখানে আশা মহ চরণ রে বৃন্দাবনে কি নাম যা দুষ্ট জন সজন আজ্য পথঞ্চ হিত্বা হে জে মুকুন্দ পদবে বন্দে নন্দ ব্রজ ইস্ত্রী নাম পাদরে মুমপি। আমি গোপী কনে চরণ রে একটি চরণ যে ধুলি ওইটা নিয়ে আমি কৃপা এইরকম ভাবে তিনি গোপী কানের মহিমা কত রকমের এখানেতে তিনি বললেন, এইখানেতে তিনি বলেছেন হয়তো গোপী গানের যদি জগতে মে পতি প্রতা যদি কেউ হতে পারে সত্যি সত্যি তো গোপী হয়, গোপী জগৎ মে পতি প্রতা হ্যাঁ, গোপীয় কো ছোড় করকে জিতনি ভি অরুন্ধতি ইত্যাদি তক ভি হ্যাঁ ये सब इनसे प्रार्थना करती है गोपियों से कि आपका पति प्रसाद धर्म हम में कुछ संचारी करो, वो लोग इतनी नहीं है जितने की गोपियां सब कृष्ण के अतिरिक्त और नहीं थे, बहुत सी बातें करनी है बतलानी किंतु उस समय नहीं, अब हम लोग चले राधा कुंज में सरस्वती गोस्वामी
एक चले श्री कुंज गौरिया बिहारी मठ
तुम्हें अनेक दूर है আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানেতে, সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মানে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে মথুরা মণ্ডল, মথুরা মণ্ডলের মধ্যে গোকুল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা নন্দগাঁও বরসানা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ, তার মধ্যে আবার বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ রাস উৎসবের জন্য, কিন্তু পঞ্চায়েতই রাস, ততপেক্ষা গোবর্ধন শ্রেষ্ঠ প্রেমাম্বিকা প্লাবনাথ, আর ও থেকেও শ্রেষ্ঠ তাহার নেত্র স্বরূপ হচ্ছে রাধা কুণ্ড এন্ড শ্যামকুণ্ড, আমরা সেই রাধা কুণ্ড শ্যামকুণ্ডেতে আমরা এসেছি পরে দর্শন করব। এই স্থান হচ্ছে জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট উষ্ণ পাশিস ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এইখানেতে শ্রীকুঞ্জে বিহারী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করলেন, তাহার উদ্দেশ্য বহু কিছু ছিল শুনেছি এ গৌড়ীয় পত্রিকাতেও আমরা পড়েছি, যখন বৃন্দাবনে পরিক্রমা করতে করতে ব্রজমণ্ডল আর এইখানে আসছেন তখন তিনি এই ধাম প্রকাশের জন্য এই রাধাকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের অষ্টদিগেতে অষ্ট সখীর কুঞ্জ ওইটি পরবর্তীকালেতে কুণ্ড রূপেতে হয়েছে, অর্থাৎ মাঠখানে স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ, স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ, ললিতানন্দ কুঞ্জ, কোনদিকে বিশাখানন্দ কুঞ্জ, অনঙ্গ মর্জনী আনন্দ কুণ্ড, এইরকম হতে আট দিকে, আবার মঞ্জরী গণের স্থান, আবার অষ্টসখা ইত্যাদি গণের স্থান, দাম সিদাম সুদাম বসুদাম স্তোকৃষ্ণ লবঙ্গ অর্জুন সুবল মধুমঙ্গল ইত্যাদির এইসবগুলি কুঞ্জ ছিল, সখীরা দখল করেলে তারা ওই কুঞ্জ ওদেরকে দিয়ে দেয়, এই রাধা কুণ্ডের বর্তমানে আমরা যে দেখছি জড়নেত্রেতে সেরকম নয়, সুন্দর সুন্দর চারিদিকে কুঞ্জ, রাধা কুণ্ডের মাঝখানে আবার কুঞ্জ, তার চতুর্দিকে সুন্দর থেকে সুন্দর সবগুলি কুঞ্জ, এইরকম হতে পূজ্যপাদ বন মহারাজ ইত্যাদিকে দিয়ে আর এই সবগুলি স্থানগুলিকে চারিদিকে এইসবগুলি কুঞ্জ নির্মাণ করেছিলেন, রাধাকুণ্ডকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিল। সেই সময়তে তিনি বক্তৃতা দিতে দিতে একেবারেতে গম্ভীর হয়ে যান, মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, ভাব আবিষ্ট হয়ে যেয়ে গলা রুদ্ধ হয়ে যায়, আর সেইখানে বলেছিলেন আমাদের আরাধ্য ধাম আরাধ্য বস্তু এইখানে রাধাকুণ্ডে, রাধাকুণ্ড সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধিকা, কৃষ্ণ হচ্ছেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ওই কুণ্ড, এইটি হচ্ছে আমাদের আরাধ্য সর্বারাধ্য ধাম এবং উপাস্য, আমি এসেছিলাম এই সব কিছু বস্তু দেবার জন্য, রাধা কৃষ্ণের যে লীলা বিলাস ইত্যাদি আর জীবগণে তার মধ্যে যে অধিকার, যেরকম তাহার পাল্যদাস ইত্যাদি হয়ে মঞ্জরী ইত্যাদি রূপেতে তাহার যে সেবা করবার জন্য দেবার জন্য আমি এসেছিলাম, রূপ গোস্বামীর অভীষ্ট তাহার মনোভীষ্ট আমি আবার এই জগতেতে দেবার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমেতে আমি সেটি দিতে পারি নাই, আমি জঙ্গল কাটতে থেকে গেলাম, জঙ্গল পরিষ্কার করব তারপরে তো এই সবগুলি রত্ন ইত্যাদি এখানেতে আরোপিত করে দিয়ে তাহার থেকে সুন্দর সুন্দর বস্তু হবে, আমি সেটাই দিই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা যে চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন, অনর্পিত চরণ চিরাত করুণে অবতীর্ণ কলৌ সমর্পিতমুন্নত জলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম, তিনি দেবার জন্য এসেছিলেন, কি দেবার জন্য এসেছিলেন, সমর্পিতম উন্নত উজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম, কি দিতে এসেছিলেন, উন্নত উজ্জ্বল রস, তার মধ্যে উন্নত উজ্জ্বল রস হচ্ছে শ্রীমতীর অধিকার, এটি আস্বাদন ইত্যাদি করবার জন্য তিনটি বাঞ্ছা দ্বারা, আর একটা জিনিস দেবার যে এসেছিলেন কি, সমর্পিতম উন্নত উজ্জ্বল রসাং শ্রিয়ম, তাহার শ্রী মানে শোভা, যেরকম হয় লতার শোভা হচ্ছে তাহার পাতা পুষ্প মঞ্জরি, যদি লতা যদি শুধু নগ্ন থাকে তার মধ্যে পাতা মঞ্জরি পুষ্প যদি না থাকে তাহলে বাতাস চললে সুন্দর সমীর চললে কি হবে, কিছুই হবে না, আর যদি তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর পাতা থাকে, সুন্দর সুন্দর মঞ্জরি থাকে, পুষ্প থাকে, তাহলে ঝকুরাতে এদিকে দিকে হিলোরা লিবে সব, তখন তার শোভা। তো উন্নত উজ্জ্বল রসের শোভা কি, উন্নত উজ্জ্বল তো একবারে গোপীগণে, তার মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা, তাহার যে শোভা, শোভা মানে মঞ্জরি ইত্যাদি, এই ভাবটা হচ্ছে তার শোভা, এইটি সমর্পিতম, এইটি সমর্পণ রাধা।